ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की तरह पुनः हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि छठवां स्कंद चल रहा है, छठवें स्कंद का बारहवां अध्याय वृत्रासुर और इंद्र का जो संवाद है युद्ध का, वो यहाँ पर चल रहा है। उसी में ये इस अध्याय का प्रभुपाद ने नाम दिया है वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। इस पर हम लोग कुछ समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छा इसका तात्पर्य और ये जो पीछे से श्लोक चले आ रहे हैं इसके पीछे से बहुत ही सार गर्भित शास्त्रों का जो सार इनमें भरा हुआ है ईश्वर के मैटर में कि ईश्वर क्या है, कैसे वो कर्म कराता है इत्यादि। तो हम लोग पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। अविद्वान एवं आत्मानम मन्यते अनीशम ईश्वरम भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयं। अविद्वानेवमात्मानम् मन्यते नीशमीश्वरम् भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम् शब्दार्थ अविद्वान ज्ञान रहित मूर्ख एवं इस प्रकार आत्मानम् स्वयं मन्यते मानता है अनीशम यद्यपि अन्यों पर पूर्णतः आश्रित ईश्वरम परम नियंता के रूप में स्वतंत्र भूतैः जीवात्माओं के द्वारा सृजति वह भगवान उत्पन्न करता है भूतानि अन्य जीवों को ग्रसते लील लेता है तानि उनको तैहि अन्य जीवों के द्वारा स्वयं स्वयं अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। वह शाश्वत अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोच्च मानता है। यदि कोई यह सोचे कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता के द्वारा उत्पन्न किया गया है और उसी शरीर को दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, तो यह सही ज्ञान नहीं है। श्री भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलते रहते हैं। तात्पर्य, कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य का कर्म या पूर्व सकाम कर्म ही प्रत्येक वस्तु का कारण है, अतः कार्य करने की आवश्यकता नहीं है नया कार्य करने की। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वे मूर्ख हैं। जब पिता बच्चे की सृष्टि करता है तो वह स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करता, वह ऐसा करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया जाता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबों के हृदयों में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। जब तक प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान का आदेश प्राप्त नहीं होता, मनुष्य कोई भी वस्तु उत्पन्न करने के लिए प्रेरित नहीं होता। अतः माता पिता जीवात्मा के सृष्टिकर्ता नहीं है। जीवात्मा के कर्मों अर्थात सकाम कर्मों के अनुसार वह पिता के वीर में स्थित होकर माता के घर में पहुंचाया जाता है। तब माता तथा पिता के शरीर के अनुसार यथा योनि यथा बीजम जब शरीर ग्रहण करता है और सुख या दुख भोगने के लिए जन्मता है। अतः मनुष्य के जन्म का आदि कारण परमेश्वर है, इसी प्रकार से मनुष्य की मृत्यु का कारण भी वही है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी परतंत्र है, आश्रित है। इसका सही निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम लोग इसमें करेंगे और बहुत सारे इसके अंदर रहस्य निहित हैं, उसके विषय में भी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। असाधु साधुता दायिन्नतिनीचोच्चता कर हानमुंच कदाचिन्मां प्रेमणा ऋतकंठयो स्फुर। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा। अविद्वानेवमात्मानं मन्यते नीसमीश्वरं भूतैः स्रजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयं। इसके पहले श्लोक में वृत्रासुर आपको पता है कि ये उपदेश क्यों कर रहा है? जब इंद्र का वज्र गिर गया, आपने ये कथा सुन ली है, इसमें पीछे युद्ध करते करते इंद्र का वज्र जब नीचे गिर गया, तो उस समय वो इंद्र को उपदेश देने लगा कि वस्तुतः जय पराजय ये सब उद्देश्य नहीं है और ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। जब इस प्रकार से उपदेश करते करते आए तो उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से कठपुतली किसी चालक के द्वारा चलाई जाती है, उसका नियंत्रण किसी कठपुतली का कोई ना कोई करता है। कठपुतली पता है जैसे 5-6 रस्सी धागे बंधे होते हैं तो उसको एक व्यक्ति पीछे से बैठ करके खींचता रहता है, तो हाथ पैर चलाती है, तो देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कठपुतली स्वयं कर रही है लेकिन उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, उसमें उतनी शक्ति नहीं है। तो ऐसा उदाहरण दिया इन्होंने वृत्रासुर रहे कि इसी प्रकार से परमात्मा भी हृदय में बैठ करके सारे जीवों के पाप पुण्य सब वो करवाता है, जो भी हम करते हैं वो सब करवाता है। लेकिन वो जब करवाता है तो कष्ट हमको क्यों अनुभव होता है? यदि रमेश ने खाना खाया तो सुरेश का पेट थोड़ी ना भरेगा, या रमेश ने खाना खाया तो उल्टी सुरेश क्यों करेगा? तो यदि ईश्वर पुण्य पाप करवाता है तो दुख का अनुभव हम क्यों करते हैं? ईश्वर करे, ये भी प्रश्न आएगा, करेक्ट। सो इसीलिए इस सिद्धांत को जरा शास्त्रों के गंभीर रहस्य को समझना पड़ेगा कि ईश्वर किस सीमा तक कर्मों का करता है, कितने सीमा में जाकर के वो कर्मों को करवाता है, कहां तक उसका हाथ है, कितना लंबा हाथ है। तो इसीलिए इस बात को ही समझना शास्त्रों का जो मुख्य उद्देश्य है, बाकी तो सब जगह ऊपरी ऊपरी बात रहती है तो हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर वृत्रासुर अर्जुन इंद्र से कहता है पीछे वाले श्लोक में भी कि संसार में जो भी है, पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तात्मा भूतेन्द्रियाशयाः शक्रुवन्त्यस सर्गादौ न विनयद अनुग्रहात्। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 25, ये सब मिलकर के भी 24, ये आपस में सर्ग नहीं कर सकते, सृष्टि नहीं कर सकते, एक नया संरचना नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल हो या कार, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, व्हील है, टायर है, ट्यूब है, स्पोक है, हैंडल है, दुनिया भर का सब है, तो सब कुछ आपस में असेंबल नहीं हो सकते हैं, वो किसी असेंबल करने वाले कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो उसको असेंबल करेगा, उसको जोड़ेगा, एक नई एक रूप दे देगा। तो पीछे वाले श्लोक में इन्होंने कहा वृत्रासुर ने कि देखो जितने भी संसार के वस्तुएं हैं ये सारी मिलकर के भी क्रियाशील नहीं हो सकती हैं, ये कुछ काम नहीं कर सकती हैं, किसके बिना? यद अनुग्रहात, भगवान के बिना अनुग्रह के। तो अब यहां पर मानो कि वेदव्यास जी, देखिए उनके डायलॉग है लेकिन इनके एक एक रहस्य इनके श्लोकों में है कि क्यों ये श्लोक बोला गया। तो कुछ ऐसे मत हैं जिसको प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि मीमांसक जो होते हैं वो मीमांसा दर्शन होता है, वो लोग कहते हैं कि जीव जो करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है, फल मिला जैसा किया वैसा फल मिलता है, इसमें ईश्वर का क्या काम है? ईश्वर का तो कोई रोल ही नहीं रहा। अरे भाई मैंने एक की हत्या किया तो मुझे उसका दंड मिलेगा, मैंने किसी यज्ञ किया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो मैंने किया तो मिलेगा, इसमें ईश्वर बीच में कहां टांग अड़ा रहा है? तो उसका तो कोई कार्य होना नहीं चाहिए। तो ये एक मत है, तो उसके उस मत के खंडन के लिए मानो वृत्रासुर ने वेदव्यास जी ने लिख दिया, क्योंकि राइटर तो मैन कौन है? वेदव्यास जी है, भागवत को लिखा तो वेदव्यास जी ने है। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सारे डायलॉग्स वृत्रासुर के बोले हों वही हों। वेदव्यास जी एक लेखक होने के कारण से, शास्त्रों को सही व्यवस्था देने के कारण से कुछ चीजें अपने से भी मिक्स करते हैं, इसलिए पुराण को स्मृति कहा जाता है। स्मृति माने स्मरण करके लिखा गया हो। तो बहुत सारे हम लोग डायलॉग सुनते हैं, इसने इससे कहा, उसने उससे कहा, तो उसमें से क्या सही है वो वेदव्यास जी उसको हिसाब से करके लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल एज इट इज कहा तो उन्होंने पूरा उतार दिया, उतारते हैं उनकी भाषा को सुनकर अपनी कविता की भाषा में वो लिख देते हैं, मतलब ये श्लोकों के रूप में। तो ऐसे ही वेदव्यास जी वेदांत सूत्र के भी राइटर हैं, समझिए इस बात को। वेदांत सूत्र सबसे लास्ट में लिखा गया, जब सब कुछ लिखाई हो गई, सारे वेद इत्यादि का विभाजन हो गया, पुराण लिख गए, सब कुछ हो गया, छह जो दर्शन थे, दर्शन मतलब फिलॉसफी जो होती है, इंडियन फिलॉसफी छह है, तो छह में से जो पांच हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा। मीमांसा मतलब यही कर्म के माध्यम से ही शरीर मिलता है, ईश्वर का क्या काम है, वो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये पांच लिख चुके थे, ये छठवां जो अंतिम कृति है वेदव्यास जी की, वो वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र में वेदव्यास जी ने अपना एक छोटा सा ग्रंथ है उनका, 555 सूत्र है, 545 से 555 सूत्र, बहुत छोटा सा सूत्र जैसे है, जैसे जन्मादस्य ऐसे छोटे छोटे था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र है, लेकिन ये सूत्र बहुत भारी भारी है, इनके अंदर पूरा वेद समाया हुआ है। रामानुजाचार्य ने पहले सूत्र की व्याख्या में 228 पेज लिखे हैं, अब बताइए 228 पेज संस्कृत में, यदि ट्रांसलेशन करेंगे तो कितने पेज हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इसीलिए अब इतनी सी चीज को इतना बड़ा करके समझा के लिखा है। तो उसी वेदांत सूत्र में वेदव्यास जी ने मीमांसा जो दर्शन है, जिसकी बात यहां प्रभुपाद ने किया है, उसको खंडन किया है। और भागवत भी वेदांत सूत्र का अकृत्रिम भाष्य है, ओरिजिनल जो भाष्य है वो ये है। तो इसीलिए बीच बीच में वेदव्यास जी भागवत में भी उन सब चीजों को यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहां पर भी इस श्लोक में उन्होंने मीमांसकों के खंडन के लिए श्लोक मानो लिखा, वृत्रासुर से मिलता जुलता, तो उसी सिद्धांत को जोड़ दिया कि अविद्वान एवं आत्मानम मन्यते अनीसम ईश्वरम। कि वो कहते हैं कि अविद्वान, जो विद्वान नहीं है, जो मूर्ख है, जिसको शास्त्र का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। अच्छा, इसमें अविद्वान कहा है, मूर्ख नहीं कहा डायरेक्टली, समझ में आया, उन्होंने अविद्वान कहा है, विद्वान का अपोजिट अविद्वान, तो मतलब महामूर्ख तो नहीं होता है उसका मतलब, तो पूरा पूरा भी नहीं लेंगे। तो वेदव्यास जी ने अपने हिसाब से कहा कि अविद्वान, क्योंकि मूर्ख कहते तो मूर्ख तो उसको कहा गया है, मूर्खों ने देहाद्यहम बुद्धि, जो कहता है मैं ये शरीर हूं, मैं ही ये शरीर हूं, वो मूर्ख कहलाता है। तो ऐसा कहने से थोड़ा गाली लगती थी मीमांसकों को, तो इसीलिए कि हमको मूर्ख कह रहे हैं, हम तो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं, हमारी फिलॉसफी अलग, ईश्वर नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन आत्मा शरीर दो पदार्थ हम मानते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला अविद्वान, उनके जो कुछ ठीक से जो शास्त्रों को नहीं समझते हैं, वो लोग कहते हैं कि आत्मानम, अपने आप को ही अनीशम मन्यते, ईश्वरम मन्यते, है तो वो अनीश, अनीश मतलब ना ईश, वो ईश नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को सोचता है कि मैंने कर्म किया तो मैं खुद ही कर्म के फलों का निर्माता और भोक्ता हूं, ईश्वर कहां से बीच में आ रहा है। आपको पता है यही उपदेश, सेम ये वाली फिलॉसफी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को किया था 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में, आप लोग पढ़ लीजिए, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कि कर्म से ही पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है, ईश्वर का क्या काम है। आप कहते हो इंद्र की पूजा करो, इंद्र का क्या जरूरत है, अरे भाई अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग मिला, पाप किया तो नरक गया, दोनों मिले जुले रहे तो पृथ्वी लोक मिल गया, तो इसमें ईश्वर का क्या काम है, कुछ काम है। तो नंद बाबा को ऐसा करके भगवान ने भ्रमित कर दिया था। तो लेकिन भगवान का ये मत नहीं है, ये नहीं समझना है। खैर, तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये अविद्वान व्यक्ति ही सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूं, इस प्रकार के भाव लाने लगता है कि ईश्वर का मतलब कर्मों के फलों को देने वाला। और परंतु ऐसा नहीं है, वो कहते हैं भूतैः सृजति भूतानि, ईश्वर क्या करता है, भूतैः भूतों के द्वारा ही, प्रकृति के द्वारा ही, ये भूतानि जितने जीव है उनको सृजति, उनको उत्पन्न करते हैं, और जैसे उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार से तानि उन सबको ग्रसते, उनको ग्रसित कर लेता है, खा लेता है, समाप्त कर देता है, तई ही स्वयं, उनके द्वारा ही। अब इसमें इन शब्दों का रहस्य है कि भूतई ही सृजति भूतानि का मतलब होता है, भूतई ही मतलब भूत में तो ब्रह्मा भी आ गए, तो इसलिए ब्रह्मा आदि के द्वारा भगवान शक्ति प्रदान करके इन सारे जीवों को सृजति सर्जन कराते हैं, सृष्टि कराते हैं। और तानी ग्रसते, और उन सबको तई ही मतलब शिवादि के द्वारा उनको ग्रसते, उनको ग्रस लेता है, मतलब उनको समाप्त कर देता है। तो इसलिए ये दो चीज बताई ईश्वर के बारे में। तो प्रश्न ये उठता है कि जब ईश्वर ही पैदा करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, और ईश्वर ही मारने वाला है, और बीच में वही पालन करने वाला है, तो हमारा कहां हाथ हुआ? यदि उसकी इच्छा से ही संसार प्रकट हुआ है और उसकी इच्छा से ही समाप्त हो जाने वाला है, तो फिर ये जो गीता भागवत का उपदेश सुनने के लिए बैठे हम सभी तो बेकार हो गया ना भाई। और उनकी इच्छा से हम आए थे और उन्हीं की इच्छा से जाना है, तो क्यों हम हरे कृष्णा जपें और क्यों भागवत कथा सुने? करेक्ट, फिर कोई मतलब रह गया? जब उनकी इच्छा से ही होना है तो हम क्यों हरे कृष्णा जपें? कोई मतलब नहीं निकलता है। अच्छा, वेद में एक चीज लिखा हुआ है, कौशतिकी ब्राह्मण उपनिषद है एक, उसके तीसरे अध्याय के आठवें मंत्र में लिखते हैं इंद्र, वहां पर भी इंद्र का संवाद है एक ऋषि के साथ। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअल में जो भी पाप पुण्य है वो सब ईश्वर करवाता है। ऐसा उ हे साधु कर्म कारयति असाधु कर्म कारयति, ऐसा करके लिखा है कि साधु कर्म कारयति यमेभ्यो उन्निशते, कि जब ये ईश्वर क्या करता है, ये जीव से ना पुण्य कर्म करवाता है और इसको ऊपर ले जाता है उच्च लोकों में। और ऐसा वो असाधु कर्म कर रही थी और अधो लोकम निनीशते, वो नीचे लोक को ले जाता है पाप करवा करके। तो जब भगवान ने ही पाप करवाया और भगवान ने ही पुण्य करवाया तो आनंद तो वो लूट रहे हैं और बीच में फंसे हम हैं, है ना। तो ऐसा शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, सारे शास्त्रों में इसी प्रकार के वचन मिलेंगे। हाँ, भगवान ही कराते हैं, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है। सुना ना ये स्टेटमेंट, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन हम हिलते हैं। आपको पता नहीं है, हम यही ऐसे बोल देते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो पत्ता कैसे नहीं हिलता भाई? भगवान के बिना का क्या मतलब है वहां पर? एक्चुअल में भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ऐसी बात सही है कि अल्टीमेट जो शक्ति का सोर्स है वो भगवान है, लेकिन उसका हाथ कितना है उसको शास्त्रों में कहा गया है कि वो प्रयोजक करता है। प्रयोजक का मतलब होता है अल्टीमेट सोर्स, वो बस शक्ति दे देगा बस, बाकी क्या सही है क्या गलत हो आप करिए, तो नाम उसी का लगेगा। जैसे मान लीजिए पावर हाउस वाले ने बिजली छोड़ दिया, अब पावर हाउस ने बिजली छोड़ दी, अब आपके घर में एसी चलाइए कूलर चलाइए और मन हो तो जो नंगी तार है उसको पकड़ लीजिए, तो किसको दोष देंगे? करंट लाएगा तो पावर हाउस वाले को। अरे भाई, पावर हाउस के कारण से मजा आ रहा है और पावर हाउस वाले कारण से एक मर भी गया, करेक्ट। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि पावर हाउस के कारण से ही वो व्यक्ति मर गया, यदि पावर हाउस वाले ने बिजली ना छोड़ी होती तो ये व्यक्ति ना मरता। अरे भाई, आनंद भी तो तुमने लूटा, एसी कूलर टीवी फ्रिज सबका आनंद लेते हो, तो इसलिए अब बताइए कि दोष किसका है, पावर हाउस वाले का है कि यूज करने वाले का? बस इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा समझेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इतना ही सिद्धांत है, पावर हाउस वाला केवल शक्ति पावर को देना है मात्र, उसका दिया और छुट्टी। अब आप घर में जाकर के क्या यूज करते हैं कैसे यूज करते हो आपके ऊपर है, समझ में आया? तो जहां जहां शास्त्रों में ये लिखा है ये वचन कि ईश्वर करवाता है, ईश्वर पाप करवाता है, वही पुण्य करवाता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, वो केवल इतने मात्र में है, उसको समझना है कि वो शक्ति प्रदान करने मात्र में, जैसे पावर हाउस पावर देने मात्र में उसकी स्वतंत्रता है और अधिकार है, प्रयोजकता है, बस उसके बाद अतिरिक्त आपको सब करना है। तो संसार में ऐसे ही होता है बिल्कुल, ईश्वर के साथ हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो ईश्वर का कार्य इतना ही है कि वो हर इंद्रियों में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, सब जगह जो शक्ति प्रदान कर देता है, अब बाकी काम वो करता है। अब आप देखिए, एक मान लीजिए वायुयान है, वायुयान मैं एक चलाने वाला व्यक्ति बैठा है पीछे से, वो उसको केवल क्या है पुश करेगा, बाकी इंजन जब डैमेज होगा एक्सीडेंट होगा, मान लीजिए कुछ फ्यूल कम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो इंजन में, तो प्रॉब्लम थोड़ी उसकी मानी जाएगी, किसकी, पायलट की नहीं मानी जाएगी, वो किसकी मानी जाती है। अब आप कहेंगे चला तो वो रहा था, अरे वो उसको केवल इंजन को, यदि डैमेज इंजन है तो डैमेज इंजन के अनुसार उसको फल देगा, अच्छा होगा तो अच्छे को लेके चला जाएगा, पूरी काम कर देगा। तो ड्राइवर का उसमें दोष नहीं होता है क्योंकि वो एक चालक मात्र है। तो इसी प्रकार से जो अंतःकरण में ईश्वर विद्यमान होकर के सबको ये कर्मों की शक्ति प्रदान करते हैं, वो दोषी नहीं है किसी भी प्रकार से, वो बस शक्ति दे दी, अब आप करते रहिए, आपके ऊपर है। समझ में आ गया? तो ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसका एक दूसरा मैनर यह भी है कि यदि इतने सारे शास्त्रों में फिर भगवान ये क्यों कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो, गीता में भगवान बोलते हैं कि शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्र में क्या लिखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे विचार करके करो। अच्छा, तो ऐसा क्यों विचार करें जब पहले वाला कर्म के अनुसार ही होना है, जब पुराना जो कर्म लिखा है उसके अनुसार ही होना है, तो हम क्यों करें शास्त्र के अनुसार? तो ये बात भी गलत है। पुराने कर्मों के अनुसार केवल तीन चीजें फिक्स होती हैं, और पुराने समय का जो कर्म है उस समय जो जो आज कह रहे हैं उसके अनुसार अभी बना है, वो भी तो कभी वर्तमान रहा होगा, तो उस समय तो आपने किया तब ना वो बना, तो आज कौन सी कमी आ गई, आज भी करेंगे तो आगे बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि सिर के ऊपर जा रही है बात, है ना? तो जो जैसे आज वर्तमान है, ऐसे पहले भी तो भूतकाल वर्तमान रहा होगा, तो उस समय हमने कर्म किए तो उसका फ्यूचर बना, तो आज भी करेंगे तो इसका फ्यूचर बनेगा। तो इसलिए प्रत्येक कर्म को प्रारब्ध तीन रूप में प्रकट होकर के वो फल देता है, जन्म मृत्यु और भोग, बस। अब आप लोग कई बार ऐसे बहुत सारे लेक्चर बहुत सारी बातें सुनते हैं, कई चाणक्य के बातों को कोट करते हैं कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये सब गलत है, पूरा पूरा सही नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हर एक संस्कृत का श्लोक और हर एक चीज सब सही होगी, कौन व्यक्ति कहा है ये जानना पड़ेगा। तो इसीलिए अब चाणक्य ने तो लिख दिया कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च, आयु कर्म वित्त धन विद्या निधन सब लिखा हुआ है, विद्या कितनी मिलेगी सब लिखा हुआ है, आप पैदा होते ही लिख जाता है। हां ये हो सकता है लिख गया हो, लेकिन मनुष्य पूर्ण रूप से मनुष्य पर ये बात लागू नहीं होती है, वृक्षों पर हो सकती है, कितने साल जिएगा कितना कष्ट भोगेगा हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास बौद्धिक क्षमता कम है, उसके अंतःकरण इंद्रियों का विकास नहीं है, इसलिए पेड़ अपने आप को सुरक्षा नहीं दे सकता है, हवा से पानी से धूप से अपने आप को बचा नहीं सकता। जानवर क्या होते हैं, जानवर को गर्मी लगती है तो छाया में खड़े होते हैं कि नहीं? तो यदि एक बात बताइए, यदि उसके भाग्य में लिखा होता तो वहीं खड़ा रहता, क्यों छाया में जाता? तो आखिरकार जो 50 डिग्री टेम्परेचर को सह रहा था वो जाकर के अब जब शैडो में गया तो 30 में आ गया, तो अब राहत मिली है नहीं, तो उसके प्रयास ने उसको राहत दे दी, उसको आराम दे दिया। तो मनुष्य मनुष्य तो पूरा उसके पास अधिकार है, देखो बढ़िया छत बना लिए, कपड़े बना लिए, क्या क्या जुगाड़ नहीं है, ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए एसी यहां नहीं लगी, जहां भी लगी हो घरों में सबके, तो वो एसी की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, क्यों? क्योंकि जीव के पास दिमाग है, वो अपने प्रारब्ध ये सोचे कि अरे मेरे भाग्य में गर्मी झेलनी लिखी है, तो बैठा बैठा पसीना ही निकाल देगा। अब आप सोचिए, ये तो बकवास बात होगी ना कि मेरे भाग्य में पसीना ही खाना पीना निकालना लिखा है, तो मैं पसीना ही निकालूं, क्यों प्रयास करूं? लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, एसी कूलर बढ़िया व्यवस्था बना लेते हैं, लो पसीना वसीना बंद, आराम से सोते हैं, और गर्मी में भी हीटर वीटर लगा लिए, गीजर लगा लिए। अब बताइए कड़क ठंड गर्मी का ज्यादा किसको ठंडी का अनुभव होता है? गरीबों को, जिनके पास खूब पैसा है, वो बढ़िया से पैक करके रहते हैं, उनको थोड़ी पता चलती है ठंडी गर्मी क्या है। जिनके बिल्कुल प्रारब्ध खराब है, धन आदि प्राप्त हुआ ही नहीं है, तो उनसे पूछिए ठंडी और गर्मी क्या है,
जिनके पास सुविधा है, अच्छे धन प्राप्त हुआ है, उनके लिए कोई ठंडी गर्मी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कहाँ है प्रॉब्लम? रोड में जो लोग, उनको मालूम पड़ता है कितनी ठंडी गर्मी है, हम लोगों को उतनी मालूम नहीं पड़ती है। तो इसीलिए प्रारब्ध जो है भोग, वो हम रोक सकते हैं, पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी नहीं है मनुष्यों पर। हाँ मिलता है, प्रयास करते हैं, कई बार गिरता है व्यक्ति, प्रयास करता है गिरता है, उठ नहीं पाता, वो बहुत ज्यादा प्रारब्ध उसका पापमय होगा तभी ऐसा होता है। लेकिन थोड़ा भी उसका पुण्य वाला यदि प्रारब्ध है तो थोड़ा सा हाथ लगाए आगे बढ़ता है, और बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे भाग्य में जो लिखा वही होगा, नहीं, भाग्य भी बना है कर्म करके, वो अभी भी बनेगा कर्म करके। तो क्रियमाण कर्म जो है शास्त्रों में जो लिखा है, भक्ति करना, कर्म करना जो भी, ये अभी हम स्वतंत्र सो कर रहे हैं पूरी तरह से। हाँ, हम कितनी रूप में प्राप्त कर सकते हैं ये हमारे परिश्रम के ऊपर है, समय कितना लगेगा हमारे प्रारब्ध के ऊपर है, कि बहुत मेहनत लग रही। जैसे आप कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है कई बार, ठीक है, और फिर ढलान आती है तो बड़े स्मूथली आप दौड़ लगा के भाग जाते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई में जाते कितनी मेहनत लगती है, पैदल आते समय कैसा पैर जाता है, धड़ 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 नीचे आधा समय लगता है। तो प्रारब्ध जब खराब होता है तो समय अधिक लगता है, परिश्रम अधिक लगता है, कष्ट बहुत होते हैं, बार बार विघ्न आते हैं, और अच्छा होने से सब अच्छा चलता है। तो इसीलिए मनुष्य बदल सकता है अपने कर्मों को, पीछे वाले कर्म के अनुसार नहीं रहेगा, ठीक है। तो पत्ता भी नहीं हिलता है, पत्ता केवल, आप ये मत सोचिए कि कुछ निकम्मे लोग होते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लिखा होगा वही होगा। अरे जो लिखा होगा उससे ज्यादा भी होगा, आपको क्या पता कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अब आपके पास एक बोरा गेहूं है, धान है, आप उसको खेत में न डाल करके आप इस अलमारी में डाल देंगे तो वो देगी बीज, वो उसमें कुछ निकलेगा। तो आपके भाग्य में यदि मान लो अरबों रुपए है, राजा बनना है, आपने पुरुषार्थ किया ही नहीं, उसको अनुकूलता दी ही नहीं, तो वो तो बेकार हो जाएगा वो प्रारब्ध होता हुआ भी। जैसे धान है, धान में सामर्थ है कि 1000 धान और निकाल देगी, लेकिन यदि आप उसको अपने घर में अलमारी के अंदर रखेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो ऐसे ही यदि आपके प्रारब्ध में है, क्या पता क्या है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब भक्ति, भक्ति का तो कोई प्रारब्ध नहीं है, किसी प्रारब्ध के बल पर नहीं चलती है भक्ति। अभी करेंगे, जितना मात्रा में करेंगे परिश्रम उतनी मात्रा में उसका फल आएगा तेजी से। तो भक्ति का तुरंत तुरंत वाला हिसाब किताब है, कर्मों का अलग हिसाब किताब है। तो इसे हाँ, मृत्यु भी टाल सकते हैं। आपको अभी बैठे बैठे विष पी लीजिए, मर गए, कहाँ लिखी मृत्यु? कोई कहता अरे जितनी लिखी उतने ही मरोगे, अरे भाई उठाया विष पी गया खत्म, कहाँ लिखी थी, क्या पता कितनी लिखी थी। तो इसलिए वो लिखी, आप कहेंगे अरे लिखा था तभी उसकी बुद्धि गई उसमें, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं ना, महात्मा गांधी को पता था, सुना ना ये वाला स्टेटमेंट, कि उसको नाथूराम गोडसे मार देगा, ऐसा उनको पता चला था कुछ, तो फिर भी उसमें गए थे। तो भाई आपको पता है कि मृत्यु होने वाली, क्यों जा रहे हो जबरदस्ती? जबरदस्ती अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलेगा कि नहीं? अब कहेंगे मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए मैंने डाला हाथ, तो ये तो बेवकूफी है, ये कोई भाग्य भाग्य नहीं होता इस प्रकार का, ठीक है। ये अपने विवेक होता है, उसका सही प्रयोग करना है। तो इसको आप भूल जाइए, आपको क्या पता आपका भाग्य क्या है, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए इस प्रकार के विचारों को निकाल करके केवल नहीं दे समय शुद्ध भक्ति करने के मार्ग में ही अग्रसर होना उद्देश्य है। ईश्वर सब कुछ कराता। कुछ लोग ये भी दलील देने बैठ जाते हैं कि गीता में लिखा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। वो यहां पर भी वही बात लिखी है कि अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं करने वाला हूं, मूर्ख जीव। और वास्तव में कौन करवाता है, कौन करवाता है, गुण करवाते हैं श्लोक के हिसाब से। लेकिन सच में इस श्लोक में मत पढ़िए, उस श्लोक में पढ़िए। इस श्लोक में प्रकृते क्रियमाणानि वाले में रहस्य क्या है, आप पीछे श्लोक में जाइए। भगवान वहां पर जब बता रहे हैं तो अर्जुन को कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति एक्चुअल में ऐसा मानता है कि मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन आप जरा सोचिए, कोई कहता नहीं प्रकृति करती है, तो प्रकृति करेगी तो मोक्ष किसका होना चाहिए? यदि प्रकृति क्रियमाणानी, यदि प्रकृति कर्मों को करती है तो जो कर्म करेगा भाई मोक्ष और स्वर्ग नरक किसको मिलेंगे? करने वाले को। तो प्रकृति को मिलना चाहिए ना, आत्मा को क्यों मिलता है? समझ में आया प्रभु? यदि प्रकृति क्रियमाणानी, यदि प्रकृति सब कुछ करती है तो प्रकृति को फल मिलना चाहिए। और प्रकृति क्या है? यही पूरा शरीर ही तो प्रकृति है। और फल आत्मा को क्यों मिलता है? वो क्यों यहां से वहां भटकता फिरता है? तो आपको इसको समझना है कि एक्चुअल में प्रकृति क्रियमाणानी से तात्पर्य नहीं है कि प्रकृति अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। ये आत्मा क्या सोचता है कि अकेला मैं करने वाला हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं। ये इस दृष्टि से बोला गया कि तुम अकेले मत सोचो कि तुम अकेले करने वाले हो। जैसे मान लीजिए एक बलदेव विद्याभूषण पाद वेदांत सूत्र में एक उदाहरण देते हैं इसके ऊपर कि वो क्या बोलते हैं उसको जो लकड़ी का काम करता है, हाँ कारपेंटर है, कोई भी है जो एक्स से काट कुल्हाड़ी से काटता है। मान लीजिए कोई एक कुल्हाड़ी से काटता है तो आपको लगता, देखने वाले को क्या लग रहा है, किसने काटा? कुल्हाड़ी ने काटा कि उस आदमी ने काटा? अब देखिए, कुछ आदमी ने कुछ कुल्हाड़ी ने, लेकिन एक्चुअल में कुल्हाड़ी के माध्यम से उस आदमी ने ही काटा है ना। लेकिन जब हम सामान्य प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही बोल देते हैं, वो हमारी आदत है थोड़ा उल्टा सीधा बोलने की। लोग चाय पीते हैं और जीभ जल जाती है तो क्या बोलते हैं? अरे चाय से जल गए। अरे भाई, कोई चाय से जलता है कि अग्नि से जलता है? जलाना काम चाय का है कि अग्नि का है? तो वो तो बोलने के लिए है, है कि नहीं। महिलाएं तवा में रोटी बनाती हैं तो एकदम से हाथ जल गया तो बोले अरे तवे से जल गई। तवा लोहे का होता, वो थोड़ी किसी को जलाता है, उसके अंदर जो अग्नि सन्निहित हो गई वो जला देती है। तो नाम बेचारे किसका लग जाता है? तवे का। तो एक्चुअल में समझ में, तो प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि का मतलब है कि जिस प्रकार से वो कुल्हाड़ी से कट तो रहा है, वो एक्स से लकड़ी कट रही है, लेकिन फिर भी वो एक्स स्वतंत्र रूप से काटने में समर्थ नहीं है। अकेले छोड़ दीजिए, काट के दिखा दे, वाला आपके पास घर में काट को ले आए, लो भैया ले आई है, तो वो नहीं काट सकती है। उसके लिए एक कर्ता चाहिए पीछे से, चेतन। और इसीलिए आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से करता है और प्रकृति भी करता है। अच्छा एक बात बताइए, वेद में मंत्र लिखा है यजेत स्वर्ग कामः, जिसको स्वर्ग चाहिए वो यज्ञ करे। ये वाक्य किसके लिए है? प्रकृति के लिए कि आत्मा के लिए? आत्मा को लेकर के ना कहा गया कि भाई तुमको स्वर्ग चाहिए तो तुम आ जाओ यज्ञ करो। तो प्रकृति के लिए शास्त्रों में कोई उपदेश नहीं है, उपदेश किसको है? आत्मा को। तो वो आत्मा को ही उपदेश है। और ये जीवात्मा क्या करता है? वो सोचता है कि मैं अकेला करता हूं। लेकिन अब मैं बताया ना, जैसे पावर हाउस बिजली आई तो पावर हाउस का भी कुछ हाथ है, और मैंने स्विच ऑन किया तो मेरा भी हाथ है, और इसका भी कुछ हाथ है। पंखा डैमेज रहेगा तो चला पाएगा आपका हाथ, और पावर हाउस की बिजली नहीं चला सकती है, तो उसमें भी अनुकूलता होनी चाहिए। अब ये व्यक्ति कहे कि मैं ना होता तो ये ना चलता। अब पंखा बोलता मैं डैमेज हूं, तुम चला के दिखाओ, तो आपस में ही लड़ने लगते हैं। एक्चुअल में तीनों चाहिए, तीनों का कर्तृत्व है, एक अकेले का नहीं है। अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती, अकेला पंखा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा केवल ऐसा जब सोचता ना कि मैं अकेला करने वाला हूं, तब तब प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए भगवान वहां पर बोलते हैं कि तुम अकेले करता नहीं हो, हम भी पीछे से हैं। चेतनस चेतना नाम, भगवान चेतनों को भी चेतना देते हैं, आत्माओं की भी आत्मा तो वो है, तो पीछे से धक्का तो वो कर रहे हैं। तो इसलिए जीवात्मा ऐसा न सोचे कि मैं अकेला करने वाला हूं। समझ में आया? तो इसलिए ऐसा होता है लेकिन कई बार कि वो पीछे वाले, जैसे रोटी है, रोटी को किसने पकड़ा? चिमटे ने। चिमटा सोचता मैंने ना पकड़ा हो तो रोटी तू छूट जाए, और रोटी को किसने पकड़ा? हाथ ने। तो हाथ कहता अरे चिमटे मैं ना पकड़ू तो तू क्या रोटी को पकड़ेगा? और हाथ को किसने पकड़ के रखा है? प्राणों ने, शरीर के बल ने। प्राण कहता मैं ना हूं तो तेरे में शक्ति कहां, तो ऐसा हो जाए, ढीला हो जाए। अब प्राण कोई आत्मा कहती अरे मैं ना हूं तो तुम्हारे अंदर चेतना, वो जो शक्ति है प्राण की दौड़ाने की, वो कहां से आएगी? और आत्मा ऐसा सोचता है कि मैं हूं इसलिए तुम लोग काम कर रहे हो, परमात्मा पीछे से स्माइल करते हुए बोलते हैं कितना मूर्ख है, अरे मैं मेरी शक्ति लेकर के मुझे भूल रहा है, मैं ना हूं तो तुम्हारे अंदर कहां से होगी, इनको कहां से चेतना लाओगे, ममई वांश जीव लोके मेरे अंश तो तुम हो, तो मेरे से शक्ति प्राप्त करके ही तुम्हारे में जो कुछ शक्ति दिख रही है वो मुझसे है, अलग से कुछ स्वतंत्र नहीं हो तुम। तो इसलिए भगवान के बारे में बहुत इसमें बहुत सारा विवाद है। शंकराचार्य आदि कहते हैं आत्मा अकर्ता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन वो सिद्धांत ठीक नहीं है। अकर्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी आत्मा आकाश की जैसे है, ऑल परवेडेड है, एक ही आत्मा है, कहीं आती जाती नहीं, स्वर्ग नरक। हम कहते हैं आत्मा सूक्ष्म है, स्वर्ग भी जाती है, नरक भी जाती है, सब जगह जाती है, गोलोक भी जाएगी। तो इसलिए तो वो सिद्धांत में प्रॉब्लम है, तो वो उसको वो सिद्धांत ज्यादा प्रभावित हो गया लोगों के दिमाग में, तो उसका अनुवाद वैसे ही करने लगे। तो उस दृष्टि से बोलते चले आ रहे हैं कि आत्मा को जो कहता है मैं करने वाला हूं, और रियल में आत्मा ही सही करता है। वेद कहता है कि ऐसा ही आत्मा भोक्ता करता विज्ञान आत्मा प्रष्टा सब आत्मा ही है, वो ही करता है, लेकिन इस प्रकृति में वो मन के द्वारा कुछ काम करता है, स्वतंत्र नहीं करता है, मन सदा उसके साथ में, उसके माध्यम से कुछ भी करता है। और ऐसा नहीं है कि आत्मा कुछ कर नहीं सकता है, एक आत्मा का अपना अहंकार है और एक एक भौतिक अहंकार है। आपको पता है जब आप लोग सो जाते हैं दो प्रकार के अहंकार एक साथ हमारे शरीर में है, एक आत्मा का अपना व्यक्तिगत जो है जो ढका हुआ है, और एक इस बॉडी में जो अहंकार है। वो जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारा सबका अनुभव क्या होता है, सुखम अहम असोप्सम न किंचित अवेदिशम, अरे बहुत मजे की नींद आई, कुछ समझ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया क्या हुआ। सुबह उठ के बोलते हैं कि नहीं आज तो ऐसा सो गया कि कुछ पता ही नहीं चला, बड़ा मजा आया सोने में। अच्छा मजा आया, किसको मजा आया भाई, इंद्रियां जितनी थी वो सो गई थी, शरीर पूरा डेड था, मन बुद्धि अहंकार सब सोए थे, ये कहां थे उस समय। आप अहंकार होता तो बोलता ना मैंने किया मैंने कुछ किया, सोचता विचार करता, लेकिन था ही नहीं, सो गया। तो ये भौतिक अहंकार सो गया उस समय, ये भागवत में भी प्रमाण है इसका कि भौतिक अहंकार सोने के बाद भी जब जागा तो कहता मैं बहुत अच्छे से सोया। तो वो एक्चुअल में आत्मा के साथ जो अहंकार है उसकी स्मृति वो बताती है, नहीं। बाकी ये जो बॉडी देखिए तीन कंडीशन में रहता है जीवात्मा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत में इंद्रियां साक्षात काम करती हैं, स्वप्न में इंद्रियां भी काम नहीं करती, मन अपनी इंद्रियों से काम करता है, जो मन के पास है अपनी वाली है ना। आंख नहीं रहती तो भी सपने में देखते हैं कि नहीं, अपने बेटे पुत्र पत्नी आदि सबको देखते हैं, खूब रसगुल्ले का स्वाद भी लेते हैं। तो वो इंद्रियां कहां से आई जीव, वो मन के पास सब कुछ है, एक मन में अंदर सब है। और एक स्वप्न भी जब नहीं होता और जागृत भी नहीं होता है, उस समय की स्थिति है निद्रावस्था सुसुप्ति, उस समय अहंकार मन इंद्रियां शरीर कुछ भी काम नहीं करता। हम जब सो जाते हैं घोर ऐसा, और सुबह उठते हैं तो कहते बड़ा अच्छी नींद लगी, अच्छे से सोया। तो ये अनुभव कौन करता है, जो अंतःकरण में जो मैं हूं, मैं आत्मा, रियल आत्मा, वो अनुभव करता है, और वो भी अज्ञान वसात ही अनुभव ऐसा करता है। तो इसलिए आपको हमको सबको ये समझना है कि ईश्वर इनके माध्यम से कार्य कराता हुआ भी, वो करता होता हुआ भी वो अकर्ता है, ये समझ के रखो। डायरेक्ट वो कोई काम नहीं करता है, प्रकृति के द्वारा काम कराता है, आत्मा के द्वारा जो भी है, और नाम ले, इसीलिए उसको फल को भोगने के लिए नरक नहीं जाना पड़ता है। यदि ईश्वर करवाता तो नरक स्वर्ग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि ईश्वर सदैव अकर्ता है, और फिर भी कर्ता भी वही है, जैसे यहां पर कहा गया कि कर्ता भी वही है और अकर्ता भी वो है। इसीलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ है उसी का नाम है ईश्वर। वो सब कुछ कर भी सकता है और कुछ नहीं करते हुए भी दिखाई पड़ सकता है, और हर कुछ करने में समर्थ है, इसीलिए उसका नाम है ईश्वर। अजीव सदा उसके अधीन होकर के ही काम करना पड़ेगा, स्वतंत्र कभी भी नहीं है। जीव कर्मों को करने में ही स्वतंत्र है, बस एक ही स्वतंत्रता है, क्या, कर्म किया। अब कोई प्रश्न किया कि अच्छा बताइए जब ईश्वर ने पैदा नहीं किया तो हमारा सबसे पहला दिन जो कर्म रहा होगा वो किसने पैदा किया। भगवान ने सृष्टि किया, यहां पर लिखा हुआ है भूतैः सृजति, भूतों को पैदा किया, तो यदि भगवान ने पैदा किया, उत्पन्न किया, तो एक ही दिन सबको घोड़ा, गधा, हाथी, शेर, भालू, बंदर, मच्छर इत्यादि बना दिया। तो यदि एक ही दिन, एक दिन में ही बनाया, तो क्या सबको मनुष्य बनाया था या फिर सबको अलग अलग 84 लाख योनियां एक साथ पैदा किया था? क्या मत है? ये देखिए प्रभु जी को कितनी, 84 लाख एक साथ। सही बात है माता जी, लोग बताइए, भगवान ने एक साथ जब पैदा किया तो सबसे पहले सारे मनुष्यों को बना दिया कि 84 लाख एक साथ बना दिया? हा, माता जी कह रही पर जल वाले को कष्ट दिया भगवान ने। मतलब हमको आज भगवान कहे कि हम नई सृष्टि करते हैं, भाई तुमको हम जलचर बनाते हैं, तो तैयार होंगे बनने के लिए? सच बात तो ये है, सुनिए, एक दिन सृष्टि हुई ऐसा तो मानना ही नहीं है, ठीक है? ऐसा मानने से बहुत भारी दोष आ जाएगा। एक साथ 84 लाख आए कि 80 लाख आए, वो छोड़ दीजिए, इस बात पर शास्त्रों में कोई विचार नहीं है बहुत ज्यादा। भविष्य पुराण में एक श्लोक लिखा है, उसमें बताया गया कि अनादित्वात् कर्मणाम, कर्म अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, लेकिन कर्म अनादि होकर के भी सादी शांत है, अंत होने वाला है। अनादि का मतलब क्या है? एक दिन पैदा हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। यदि आप ऐसा कहते हैं कि एक दिन भगवान ने 84 लाख योनियां बना दी, तो आप बताइए कि जिसको सुअर बनाया वो तो बहुत गुस्सा आएगा फिर तो, जिसको मच्छर बनाया, एक तो बढ़िया किसी को स्वर्ग में डाल दिया बढ़िया भोग करने के लिए, और एक को यहां सड़ने के लिए मां के गर्भ में डाल दिया बेमतलब में, तो गाली नहीं देंगे? और भगवान को क्रूरता आ जाएगी उस पर कि किसी को अंधा बनाया, किसी को लंगड़ा, किसी को कुरूप, किसी को गोरा, काला, भूरा, नीला, पीला, जो भी है, सुंदर, विद्वान, मूर्ख, हर प्रकार का बना दिया, तो भगवान में दोष आ जाएगा। तो वेदांत सूत्र में एक वेदव्यास ने सूत्र बनाया कि भगवान सब प्रकार के दोषों से रहित है, वो उसने जीवों को केवल कर्मों का फल देते हैं बस, जैसा जीव ने किया, अब किस दिन किया, कैसे किया, वो सब नहीं, अनादि है। कर्म किस दिन पैदा हुआ, अनादि काल से है। लेकिन जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं कि नहीं, क्रिकेट मैच देखा है आपने, वो 5 दिन का एक मैच होता है, टेस्ट मैच बोलते हैं उसको। तो मान लो 2 खिलाड़ी खड़े हैं, 90 ओवर का मैच है, खेलते खेलते पूरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, दिन पूरा 90 ओवर हो गए। तो मान लीजिए एक पेविलियन में एक खड़ा है सचिन तेंदुलकर, एक में सौरभ गांगुली खड़ा है, तो जब दूसरे दिन मैच होगा तो जहां खड़े थे वहीं से आएंगे, वहीं स्टार्ट होगा। मतलब वो यदि सचिन उस तरफ खड़ा था और सौरभ इस तरफ खड़ा था, तो दोनों जो है वो उसी पेविलियन में खड़े होकर खेलेंगे। ये नहीं है कि नए तरीके से भाई चेंज कर लो, आज स्ट्राइक चेंज नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही कर्म जो है, जिसका जो होता है, जहां से एंड होती है सृष्टि का, जिस समय समापन हो जाता है, जब स्टार्ट होता है, तो उसी के अनुसार उनको जन्म प्राप्त हो जाता है। उतने ही भोगने के लिए मनुष्य के जितने भी देह है ना, जिनका जैसा पाप पुण्य है उसके अनुसार उनको देह प्राप्त हो जाती है। तो एक ही दिन सब हो जाते हैं ऐसा नहीं है, क्रम बताया गया है कि पहले जलचर, फिर इस प्रकार से उड़ने वाले, है ना, वो पापों के अनुसार है कि पहले पाप किसका है, फिर पुण्य उसे ऊपर 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 जाता है, तो पुण्यात्मा आराम से आते हैं, ये कहिए। तो इसीलिए, लेकिन आप ये मत समझिए कि एक दिन हुआ, अनादि है कर्म जो है, अनादि है, लेकिन भगवान उस अनादि कर्मों के फल को देने वाले हैं, दाता हैं, तो वो दे सकते हैं। और यदि मुसलमान लोग कहते हैं कि जो मनुष्य है वो मनुष्य ही बनता है, सुअर सुअर ही बनेगा, कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। तो बेचारा कुत्ता तो हमेशा लात ही खाता रहेगा सबकी, सुअर तो मालिक आता रहेगा, तो ये तो गलत है, फिर तो ईश्वर क्रूर हो गया फिर तो उनके प्रति, ये कैसी बात है? और उसमें भी चेतना है, आत्मा रूह तो उसमें भी है, तो फिर तो उनके साथ में ईश्वर ने गलत कर दिया, उनको केवल अच्छी अच्छी चीजें दिया नहीं, हमको तो बढ़िया चीजें दिया। तो ईश्वर में, और ये भगवान ये भी कहते, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान हूं, सबको समान देता हूं, तो फिर ये दोष भी ईश्वर में आ जाएगा कि आप झूठ बोलते हो, आप कहते हो हम सम है, अरे सम है तो सबको एक जैसा देते चाहिए था, अलग अलग क्यों दे रहे हो? तो इसलिए सारांश बात यह है कि इतना होते हुए भी ईश्वर जीव के कर्मों के अनुसार ही कर्म फल देने में ही ईश्वर है, यह समझिए। कर्म का फल जो ईश्वर करता है वो कर्म का फल दे। अच्छा बताइए, एक दुकान में आप कंपनी में काम करें और मालिक ही ना हो उसका, तो आप जो महीने भर काम करेंगे दक्षिणा कौन देगा आपको? पता नहीं चलेगा ना। तो इसलिए कर्म फलों को देने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो हम जो मीमांसकों के जैसा नहीं कि कर्म फलों को देने वाला ही नहीं है, हम कहते हैं कि कर्म फलों का जब तक देने वाला नहीं होगा तो डिसाइड कैसे होगा कि इसने किसने क्या किया, बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी। अब मान लीजिए कौन देखने वाला ही कोई ना हुआ, भाई कौन देख रहा है किसको क्या मिलेगा? तो ईश्वर को बोला गया दृष्टा अनुमंता, वो देखता है किसने क्या किया, उसके अनुसार उसको फल प्रदान कर देता है और बस निर्लिप्त रहता है। फिर भी उनको देख करके, कर्मों को फल दे करके भी लालच में नहीं आता कि मैंने इसको स्वर्ग दे दिया तो मैं भी कुछ ले लूं, कुछ भी नहीं। नादत्त कश्चित कर्माणी, किसी के ना पाप कर्मों को ना पुण्य कर्मों, किसी को भी ना लेते हैं ना देते हैं, कुछ नहीं, जैसा किया उतना उसको दे देते हैं। हाँ, उनकी शरण में यदि कोई गया तो सारे पापों को वो क्षमा कर देते हैं, जाओ भैया तुम मुक्त हो गए आज से। तो उनकी शरण में यदि कोई गया, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से और पुण्यों से मुक्त कर देंगे, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, इसको तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए अन्य कर्मों को कर्म के अनुसार देते हैं, बाकी उनकी शरण में जो गया उनको भक्ति प्रदान करके उनके पापों को काट करके समाप्त करके। हमारे देश में भी होता है, पापी कितना भी हो राष्ट्रपति से अंतिम याचना करने का अधिकार है या नहीं? राष्ट्रपति के पास में अंतिम याचना, मृत्यु से मुझे बचा लो, ऐसा करके जाते हैं। तो वो उसकी इच्छा है, वो देना चाहे तो दे। तो भगवान के पास भी स्वतंत्रता है। वो पाप मोस्टली ऐसे ही होता, जो जाता है उनकी शरण में उनके पाप काट देते हैं। तो इसलिए हमको कर्ता नहीं मानना। आज के पूरा सारांश ये है कि वास्तविक कर्ता भगवान है, प्रयोजक कर्ता है, लेकिन जो भी करेंगे पाप पुण्य हमको भोगना पड़ेगा। कर्म अनादि है, इसलिए जीवात्मा तो अनादि है ही है, तो कर्म भी अनादि है। एक दिन भगवान ने ऐसा सबको पैदा किया अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है, कर्मों के कारण से ही भगवान ने वैसा उनको शक्ति प्रदान करके योनियां प्रदान कर दी, उसमें जीव ही कारण है, भगवान उसमें नहीं, भगवान केवल उनको घर दे रहे हैं भोगने के लिए बस, ठीक। और इस प्रकार से अब वो भगवान की हम यदि शरण में जाएंगे तो हमें सारे कर्मों के चक्करों से मुक्त होकर के भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका सारांश है। हरे कृष्णा।